और जो अंदर के हैं असल अंतर्मुखी होकर के रहते हैं क्या, तो यहां सारा ही उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है? अंदर वाले रह जावेंगे का मतलब क्या हुआ?
ये तो पूछ रही
है।
ये तो पूछ रही
है। हाँ, यही तो बताया कि यहां अंदर वाले कौन है। अंदर वाले रह जावेंगे, कहाँ रह जावेंगे?
बाप के पास।
हाँ, बाप के पास रह जावेंगे, 16,000 की लिस्ट में आ जावेंगे, परिवार में आ जावेंगे। किस परिवार में? राज परिवार में आ जावेंगे। और जो बाप के बने ही नहीं रह जावेंगे। हाँ, बाहर की दुनिया में रहते हुए भी घरग्रस्त के अंदर है, गीता पाठशाला चला रहे हैं, जैसे बाबा चलाता है वैसे ही चलते हैं। उनसे कहा जाए आ जाओ तो आ जाएंगे, उनसे कहा जाए नहीं गीता पाठशाला चलाओ 2 साल और चलाओ तो चलाएंगे, उनसे कहा जाए जमीन ज्यादा सब बेच दो तो बेच देंगे, उनसे कहा जाए मकान नहीं बनाओ तो नहीं बनाएंगे,
एक भी पॉइंट कट नहीं करेंगे।
तो वो अंदर वाले हुए या बाहर वाले हुए?
अंदर वाले हुए,
बाप की नजर में
अंदर वाले भी अंदर है,
बाहर होते हुए भी अंदर वाले, तो वो मुझ पद नहीं पाएंगे।
ले जाएंगे तो अंदर।
हाँ, सदगुरु निंदक ठौर न पावे, जो सदगुरु की निंदा कराने वाले होंगे, श्रीमत पर न चलने वाले होंगे, उनको ठौर नहीं मिलेगा, वो अंदर नहीं रह सकते।
ठौर मीन्स जो बाप के साथ,
बाप का जो ठौर है
वो नहीं मिलेगा।
हा? जो बाप संगठन बनाता है
उसमें ठौर नहीं,
जो नई दुनिया क्रिएट करता है उस नई दुनिया में उनको ठौर नहीं मिलेगा। उनको कहा जाएगा जाओ, तुम इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन के बीज रूप हो ना, तुमने विरोध किया ना हमेशा, बाप की बदनामी कराई ना, जाओ विदेशों में जाओ और वहाँ इस्लामियों बौद्धियों और क्रिश्चियंस की सेवा करो,
सेवा करो, नहीं इकट्ठा करो
जाके, हाँ उनकी ठोकरें खाओ जाके।
दादा, समाधि पर रहे समाधि कभी आती
है
क्या है?
जो समाधि बनाते हैं ना वो मकबरा टाइप
का
बना, शांति स्थल बनाया,
ब्रह्मा बाबा का तो शरीर छोड़ने के बाद बना,
तो जीते जी समाधि का
मुसलमानों ने बनाया ब्रह्मा बाबा का, क्योंकि कुमारका दादी के हाथ में ताकत आ गई बनाने बिगाड़ने की, तो वो तो मुसलमानों का ही काम करेंगी, वो कोई समाधि थोड़ी क्या, तो कब्र बनाई,
कब्र बनाई।
मुसलमान क्या करते हैं?
मरने के बाद ऊपर कबर बना
देते, कबर बना देते हैं, तो वो बात अलग। लेकिन समाधि का वास्तविक अर्थ है सम माने संपूर्ण, अधि माने अंदर, क्या जैसे कहते हैं आध्यात्मिक, अधि माने अंदर, आत्मिक माने आत्मा, आत्मा के अंदर क्या क्या है, जैसे ये बीज है आम का बीज है, इस बीज के अंदर क्या है भाई, आम का झाड़ है, अधिक मालूम पड़ गया ना इसके अंदर क्या है,
पूरा
बीज देख करके जो जानकार होगा वो पहचान देगा इसके अंदर आम का झाड़ है, आम के ऐसे ऐसे पत्ते होंगे, ऐसी ऐसी टहनियां होंगी, ऐसा ऐसा फल होगा, ऐसा ऐसा बौर होगा, होगा ना। तो ऐसे ही ये आत्मा भी बीज है,
देख के पहचान जाते हैं बाबा जी।
इस आत्मा रूपी बीज को पहचानना, जानना, इस आत्मा रूपी बीज में कितने जन्म भरे हुए,
कौन कौन
कहाँ इसने पार्ट बजाया, किस देश विशेष में पार्ट बजाया, किन किन कैसी आत्माओं के बीच में पार्ट बजाया है, वो आत्मा के अंदर की सारी बात बाहर निकाल ले, उसको कहेंगे आध्यात्मिक ज्ञान,
ज्ञान से।
तो बात क्या थी प्रश्न?
समाधि।
सम माने संपूर्ण, अधि माने अंदर, माने संपूर्ण अंदरूनी स्टेज में पहुंच जाना, उसको कहते हैं समाधि। वो साधु संन्यासी जो समाधि लगाते हैं,
जीते जी शरीर छोड़ते
हैं, वो तो शरीर को अंदर छोड़ देते हैं, आत्मा तो फिर भी जाके जन्म लेती है,
पानी के अंदर, मिट्टी के अंदर,
आत्मा गर्भ में जाके जन्म लेती है कि नहीं, आत्मा गर्भ में जाके जन्म ले, वो ये समझते हैं कि पार निर्वाण गया, पार निर्वाण तो कोई नहीं जाता। अब बाप हमको समाधि सच्ची देना सिखाते हैं,
वैसे जब बाबा तो जानता है हर आत्मा को देख के, लेकिन हर आत्मा को
आत्मा भी अपना जाने,
खुद से खुद
हम खुद अपना अपने से जाने और दूसरों का भी जाने।
जैसे राम वाली आत्मा कृष्ण आत्मा को अपने आप सारे अपने जन्मों का
हाँ जी अपने जन्मों का हिसाब किताब पता चलेगा
सबको होगा,
और संगी साथी दूसरों का भी,
दूसरों का
जन्म जन्मांतर का पता चलेगा।
अभी हमारा भी सबका पता चलेगा ना बाबा अपना क्या क्या कितना जन्म लिया है,
नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा तो पार्टधारी बेवकूफ या होशियार। कोई रंगमंच पर पार्ट बजाता है और वो पार्ट बजाने वाला को हम वो सब भूल गए, कुछ याद नहीं है, क्या पार्ट बजाए,
बेवकूफ है
तो कहेंगे बेवकूफ है बेटा।
इस डीप ज्ञान से करते करते भी अभी भी होता है एहसास तो होता है, कभी भी ऐसा नहीं है।
बाबा वो ने बताया है
क्या क्या बताया है
कि क्लास में बैठने से भी धारणा नहीं होगा,
क्लास में बैठने से
क्लास मतलब क्लास मुरली सुनने से भी धारणा नहीं होगा, धारणा जब होगा जब क्लास में बाबा का परिचय दूसरों को देंगे।
क्या क्या
क्लास सुनो सुनो वो खाली उसको कहने का भाव ये है कि क्लास में खाली बैठ लिया मुरली सुन लिया उससे मात्र धारणा नहीं होगा, तो उसको बाहर जाके सर्विस करना है और आत्मा को संदेश देना है मैसेज देना है तब जाके धारणा होगी। अच्छी
ठीक है
आपने मुरली में बताया
तो बाबा ने मुरली में बताया तो क्या ये बात कैसे है वो पक्का करना चाह रही है
माना कोई क्लास ही नहीं करेगा बाबा का, बाबा का क्लास करेगा ही नहीं बैठेगा ही नहीं सुनेगा ही नहीं बाबा के सामने ही नहीं आएगा सन्मुख बैठ करके क्लास नहीं करेगा तो बाबा का वाइब्रेशन मिलेगा बाबा की दृष्टि मिलेगी नहीं मिलेगी। और बाबा जो डायरेक्ट मुख से सुनाएगा वो ज्यादा सच्ची बात होगी सच्चा ज्ञान होगा कि दूसरों से हम सुनेंगे वो ज्यादा सच्चा ज्ञान होगा। बाबा से डायरेक्ट जो हम सुनेंगे बाबा ही सच्चा सुना सकता है और बाकी कुछ न कुछ मिक्स कर देंगे। दूसरी बात बाबा का संग का रंग हमको ज्यादा लेना है या दुनिया वालों का संग का रंग ज्यादा लेना है, बाबा का संग रंग हमें जितना ज्यादा लगे उतना ज्यादा अच्छा, हम उतना ही ज्यादा जन्म जन्मांतर बाबा के नजदीक रहेंगे हीरो पार्टधारी के नजदीक रहेंगे तो हमको फायदा होगा। अच्छा कोई क्लास में न बैठे बाहर जाकर के VCD सुन देख ले किताबें पढ़ ले एडवांस ज्ञान या कोई भी ज्ञान हो पढ़ ले तो उसे वाइब्रेशन नहीं मिलेगी, दृष्टि की पावर नहीं मिलेगी, वाचा की सत्यता
नहीं मिलेगी,
और हम जो प्रश्न पूछेंगे
उसका
वो किताब तो जवाब नहीं देगी नहीं। और बाबा के सामने बैठ करके तो हम प्रश्नों का समाधान भी कर सकते हैं। तो हर हालत में क्लास में न बैठने से घाटा ही घाटा है। हाँ ये बात जरूर कही कोई बैठे क्लास में दिखाने के लिए लेकिन बाबा की कोई बात न सुने एक कान से सुनता है दूसरे कान से निकाल रहा है बुद्धि रहे बाहर
चल रहे हैं सारे
बुद्धि रहे बाहर की दुनिया में तो प्राप्ति नहीं होती। यहाँ सन्मुख मेरे सन्मुख बैठ करके जो सुनते हैं वो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेंगे मुरली में बोला लेकिन बैठा वो सामने देखने में तो सामने बैठा है लेकिन बुद्धि लगी हुई है किसी और की तरफ है तो सन्मुख हुआ या विमुख हुआ वो वाइब्रेशन खराब करने वाला हुआ विभिचारी वाइब्रेशन बनाने वाला हुआ शिवालय बनाने वाला हुआ या वैश्यालय बनाने वाला हुआ तो वैश्यालय बना रहा तो वो सन्मुख नहीं है उसको सन्मुख नहीं कहेंगे उसको विमुख ही कहेंगे। ऐसे बहुत से बाबा की क्लास में आ जाते हैं समझते हैं हम जाके देखें
दर्शन कर रहे हैं
ना हम जाके बाबा की क्लास में देखें कि बाबा हमको पहचानते हैं कि नहीं कि हम बेकार में जाते हैं कि नहीं। अरे बाबा को क्या पड़ी है तुम बेकार में जाते हो कि नहीं जाते हो एक एक को देखने की जरूरत है बाबा को तुम जैसा करोगे वैसा पाओ
उसको हम जानते ही हैं।
बाबा उसने जब राम को हराने की कोशिश की लव कुश ने राम को हराने की कोशिश की वो बेहद में कौन सा पीरियड है
लव माने क्या होता है
प्यार
लव माने प्यार होता है होता है ना और कुश माने क्या होता है
कुश का बांध जैसे
कु कुश माने क्या होता है?
कांटा।
एक घास होती है कांटे जैसी,
जो कुश होता है
उसका नाम देते हैं कुश, जो कांटा लगाती है उसको कहते हैं कुश। तो एक है लपफुल,
एक है लोफुल,
एक है बड़ मारने वाला कांटा। क्या राम के दो बच्चे हैं, एक है इस्लामी लवफुल, क्या उनमें ज्ञान नहीं ज्यादा होता है? मुसलमानों में ज्यादा ज्ञान होता है? ज्ञान नहीं, अल्लाह मियां ने धरती बनाई, अल्लाह मियां ने सूरज बनाया, अल्लाह मियां ने सागर बनाया,
अल्लाह अल्लाह करते
हो। तो ये कोई ज्ञान हुआ? लेकिन क्रिश्चियंस में
ज्ञान ज्यादा,
ज्ञान बहुत होता है, ज्ञान में होशियार होते हैं, लेकिन दुख देने वाले, दुनिया को नष्ट करने वाले क्रिश्चियंस है या मुसलमान? एटम बम कौन बनाते हैं? क्रिश्चियंस एटम बम बनाते हैं, बहुत दुखदाई है।
राम उनका कहना था कि लव कुश जो थे तो राम के ऊपर,
इसलिए बताया कि इस्लाम धर्म का बीज हो गया लव, और क्रिश्चियन धर्म का बीज हो गया कुश। कुश
तो दोनों ने क्या किया? दोनों ही राम के पास गए ना वो लोग।
हाँ, तो यहाँ शूटिंग में शूटिंग नहीं करते हैं, वो लड़ाई नहीं करते हैं क्या?
लड़ते हैं।
डिसर्विस नहीं कर रहे हैं? बच्चा बाप से लड़ाई लड़े तो डिसर्विस नहीं होगी? है। 63 जन्म भी क्या किया इन्होंने, इस्लामियों ने और क्रिश्चियंस ने 63 जन्म क्या किया भारत के लिए? अच्छा किया है? झूठी झूठी बातें सुना करके सारे हिंदुओं को कन्वर्ट करके दूसरे देश में दूसरे धर्म में ले जाते रहे।
सुनाती है वाल्मीकि
ग्लानी की ना हमेशा, तो उनका बीज भी वैसा ही हुआ। क्या क्या कथा कहानियां बनाई हुई
भाई। विकार का बीज कैसे पैदा हो गया?
देवान आता है, मैं देह हूं, बस बीज पैदा हो गया।
जैसे सदियों
अगर मैं देह हूं, देह हूं तो देह की इंद्रियां भी है ना, तो देह की इंद्रियां अपने अपने तरीके का काम भी तो करती है, तो देवान नहीं आएगा?
तो
ये बीज हो गया
सतयुग में,
सतयुग में देवान होगा ही नहीं, हम बिंदु आत्मा
आत्मा,
ये हमारा कपड़ा है, जब चाहेंगे कपड़ा उतार के रख देंगे, अगला जन्म लेंगे।
ये त्रेता से शुरू हो गया ना, द्वापर से हो गया ना, कब से शुरू हो गया?
क्या
देवान
त्रेता के अंत से
ऐसा?
आठ कलाएं जब कम हो गई, आत्मा का आधा गुण कम हो गया, आधी शक्ति छीन हो गई, देवान शुरू हो गया। पहले संगम युग में देहवान था ही नहीं, तो राधा कृष्ण का जन्म हुआ 16 कला संपूर्ण, क्योंकि देहवान था ही नहीं। लक्ष्मी नारायण के चित्र कहाँ गया? पीछे। लक्ष्मी नारायण के चित्र में जो संगम युग के लक्ष्मी नारायण है ऊपर, वो आपस में एक दूसरे को देखते भी नहीं है,
टच भी नहीं है, देखते भी नहीं,
टच भी नहीं कर रहे हैं, इंद्रियों से टच भी नहीं कर रहे हैं, देखते भी नहीं है, माने उनको इंद्रियों में देहभान है ही नहीं। फिर राधा कृष्ण जैसे बच्चे कैसे पैदा होंगे? बच्चों की पैदाइश करने के लिए तो दो का योग चाहिए ना,
वाइब्रेशन,
कुछ तो चाहिए। पपीता है, एक पपीता का पौधा यहां हो नर, और एक दूसरा पपीता का पौधा 2-3 किलोमीटर दूर हो, बीच में कोई भी पपीता का पौधा न हो, तो जो मादा पपीता है वो 2 किलोमीटर दूर से ही नर पपीते से अपना वाइब्रेशन खींच लेगा। तो क्या जड़ में ये ताकत हो सकती है? चैतन्य मनुष्य में ये ताकत नहीं हो सकती है? हो सकती कि नहीं? तो ये अभी बाबा सिखा रहे हैं कि ऐसी सृष्टि मैं आकर के बनाता हूं जहाँ देवान का नाम निशान नहीं होगा। वाइब्रेशन से ही तुम राधा कृष्ण जैसे बच्चों की पैदाइश करेंगे। फिर राधा कृष्ण को कैसा दिखाएंगे? वो एक दूसरे को देख रहे हैं, माने एक दूसरे से लगाव हुआ पड़ा है। किन इंद्रियों का? भ्रष्ट इंद्रियों का नहीं, श्रेष्ठ इंद्रियों का। श्रेष्ठ इंद्रियों में भी जो सबसे श्रेष्ठ है, दृष्टि का प्यार लगा हुआ, वो दृष्टि से ही प्यार भोगेंगे, सुख भोगेंगे, उसी से संतान पैदा हो जाएगी। फिर त्रेता में आते हैं तो देवान भाव और बढ़ जाता है, दो कला कम हो गया। इतना देवान बढ़ गया कि बाहुपास में बनने लगे,
बाहुपास में।
तो ऐसी स्टेज जब हो जाती है तो शक्ति ज्यादा क्षीण होती, और द्वापर में जाते जाते तो भ्रष्ट इंद्रियों की पैदाइश शुरू हो जाती है, आकर्षण शुरू हो जाता है भ्रष्ट इंद्रियों का, वहां पतन फिर तेजी से होता है, शक्ति क्षीण होने लगती है, दुनिया बहुत ही नीचे गिरने लगती है।
कई लोग मानते हैं, लेकिन शास्त्र में भी तो लिखा है दृष्टि से पैदा हुए कौर पांडव, खीर से पैदा हुए राम,
हाँ
सीता पैदा हुई पृथ्वी से, हनुमान पैदा हुआ हवा से।
हाँ जी, हाँ जी,
वो संगम युग का ही याद करवा।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और
अभी घर को सुधार करो, एक घर में कौन सी घर की बात है? घर को सुधार करो,
पहले घर का सुधार फिर पर का सुधार। अगर देह अभिमान में है तो देह अभिमान में होने के कारण जो देह का बाप है, देह की अम्मा है, देह के भाई है, देह के बहन है, वो याद आएंगे, ये हमारा घर है क्योंकि हम देह हैं, हमारी देह का घर है, ये देह का परिवार है, इसका पहले सुधार। अगर हमने अपने को आत्मा समझ लिया तो हमारी आत्माओं का परिवार कौन सा होगा तैयार? 108 आत्माओं का परिवार तैयार होगा, संगठन तैयार होगा, माला बनेगी, उसका हम सुधार करें।
पहले
वो 108 आत्माएं बिगड़ी हुई है या सुधरी हुई है?
बिगड़ी हुई
है, तो बिगड़ी हुई आत्माओं को हम सुधार करेंगे तो भगवान के घर का, भगवान के परिवार का सुधार होगा ना, तो मेंटेलिटी बदल गई।
हद में
अर्थ उठाएंगे तो देह का अर्थ उठाएंगे, देह का परिवार, क्योंकि हमने अपने को देह समझ लिया।
तो पहले घर को,
अगर अपने को आत्मा समझेंगे
तो फिर आत्मा,
तो आत्मा तो परमात्मा का बच्चा है, किसका बच्चा है? तो परमात्मा के घर का सुधार करेंगे। इसलिए बाबा मुरली में कहते हैं रोज मुरली सुननी चाहिए, पता नहीं हमारे माफिक कौन सा पॉइंट लग जाए, एक पॉइंट से ही हमारे जीवन का परिवर्तन हो सकता है।
मुरली सुनते समय पूरा सोए और बोले हम तो रोज मुरली सुनते हैं, उनका क्या करें?
क्या करें, क्या कोई कुंभकर्ण की औलाद बना है, बनेगी कि नहीं बनेगी?
बाबा ने कले परसों तो मुझे भी बताया कि बाबा को तो जल्दी दिवस दे देते, लेकिन अपने पति को दिवस नहीं दे सकते।
जल्दी ये क्या बोल जाती
है? बाबा ने मुरली बताया कि बाबा को तो जल्दी डिवोर्स दे देते हैं, लेकिन अपना जो पति है शरीर का उसको डिवोर्स क्यों नहीं देते हैं? जल्दी उसको डिवोर्स क्यों नहीं हो जाता है?
वो नौजवान सुंदर पति मिला होगा इसलिए। बूढ़ा बड़ा काला कल उठा मिल
जाए। ठीक है,
बाबा
कभी कभी प्रश्न पूछने वाले खुद ही मुसीबत में फंस जाते।
बाबा पौंड्र का अर्थ क्या है? पौंड्र का अर्थ क्या है?
क्या
पौंड्र?
पौंड्र
हद में क्या है? क्या होता है तुम्हें? शास्त्रों की बातें याद आती है, मुरली और अपने गाड़ी को कुछ भी पॉइंट याद आ रहे हैं।
सारे
पूरा
कैसे
कौन को रोके कौन रोके
बाबा कोई झाड़ के चित्र को पसंद करते कोई सीढ़ी के चित्र को पसंद करते ये क्यों
इसलिए कि जिनको लक्ष्मी नारायण जैसा बनना होगा लक्ष्मी नारायण की प्रजा में जाना होगा उनको क्या अच्छा लगेगा लक्ष्मी नारायण का चित्र अच्छा लगेगा जिनको आदि से अंत तक भारत में रहना होगा उनको सीढ़ी का चित्र अच्छा लगेगा है ना और जिनको दूसरे दूसरे धर्मों में परिवर्तन होना होगा उनको जाड़ का चित्र अच्छा लगेगा कहां गया वो
हाँ मुरली बोला जब तक भक्ति मार्ग का संस्कार जहाँ जाएगा तब तक मैं नहीं आऊँ बोलाए
क्या
जिनके अंदर भक्ति मार्ग का संस्कार रह जाएगा तो बाबा नहीं आएगा मैं नहीं आऊंगा मैं नहीं मिलूंगा कैसे
ऐसा कुछ ऐसा नहीं
शरीर छोड़ना पड़ेगा
ये बोला जिनके अंदर भक्ति मार्ग के संस्कार रह जाएंगे वो आत्माओं को अपना शरीर
छोड़ना
पड़ेगा जबरियन छोड़ना पड़ेगा स्वेच्छा से अपने शरीर को त्याग करने वाले नहीं बनेंगे
जैसे खनार में चला ना भक्ति मार्ग का तो यहाँ भी तो इतना अभी ये क्लियर नहीं हो रहा है कि एक्चुअल में भक्ति मार्ग बाबा क्या इशारा कर रहे हैं उसने खाली पूजा पाठ करना ही भक्ति मार्ग है या मंदिर में जाना ही भक्ति मार्ग है
श्रीमत के बरखिलाफ जो भी बातें हैं वो सारा भक्ति मार्ग है श्रीमत के अनुकूल जो भी है
ज्ञान मार्ग
वो सब ज्ञान मार्ग है
शास्त्रों में शास्त्रों में रुक्मणी का अर्थ तो अच्छे दिखा है रुक्मणी का पाठ है ना जो अच्छा है फिर ये संगम में तो
माने राधा का पाठ अच्छा नहीं है
शास्त्रों में
रुक्मणी का पाठ अच्छा है लेकिन राधा का पाठ
नहीं उनका कहने
हमारी बात का जवाब दो राधा का पाठ अच्छा है कि नहीं
अच्छा ही बाबा राधा रुक्मणी राधा का दिए
रुक्मणी राधा एक ही है
नहीं
है
हाँ राधा अलग है
रुक्मणी
अलग है रुक्मणी ने राज परिवार में रह करके सुख भोगा
शादीवादी
दुनियादारी का सुख भोग लिया
प्रेम में थी
है लव अफेयर भी किया और राधा ने राधा तो अपने परिवार में रही शादीशुदा थी बांधेली थी तो भी
पूरा उसका
प्यार पूरा किससे किया भगवान से किया तो कहाँ राधा और कहाँ सुख साधन संपत्ति भोगने वाली रुक्मिणी मान मर्तबा भोगने वाली रुक्मिणी वो अच्छा पाठ है क्या ब्राह्मणों की दुनिया में कोई मान मर्तबा भोगे सुख साधन संपत्ति सब प्रकार की भोगे बड़े बड़े महलवाणियों में रहे अच्छे अच्छे लकलके बकाबक सफेद कपड़े पहने क्या और बढ़िया बढ़िया भोजन बना बना के खाए और दूसरों को खिलाए तो सारी सुख साधन संपत्ति सब मिल गई ना मान मर्तबा सब मिल गया ना ये अच्छी बात है त्याग किसने किया राधा ने किया या रुक्मिणी ने किया त्याग तो राधा अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया में त्याग राधा कर रही है या रुक्मिणी कर रही है या जगदम्बा कर रही है राधा ने त्याग किया अभी भी त्याग कर रही है शास्त्रों में भी दिखाया है और
बाबा आदि पुरुष और अनादि पुरुष कौन है
अनादि शिव
आदि पुरुष
पुरुष है कि नहीं आत्मा है कि नहीं शरीर रूपी पूरी में आकर के पाठ बजाता है कि नहीं तो वो भी पुरुष है वो आदि पुरुष है वो अनादि पुरुष है और जो आदि पुरुष है वो आदि पिता है तुम आदि देव है पुरुष है पुराण है शंकर को कहा जाता है आदम एडम ईव नहीं
उसमें बताते हैं लगातार
दादा और जब वैष्णवी देवी देवता का पालन करते ना वैष्णवी देवी
तो उस समय रिसीव करना होगा सिर प्राप्त जब चाहिँ वैष्णवी देवीले देवताहरूको पालना गर्छ नि त्यति बेला चाहिँ वैष्णवी देवीमा चाहिँ शिवले प्रवेश गर्छ हो तर चाहिँ त्यो चाहिँ चाल्चे पाउँदैन भनेर भनेको छ नि
मतलब जब वैष्णवी देवी का पाठ चलेगा ना वैष्णु का वो देवताओं की पालना करेगी तो क्या उस समय उसमें शिवबाबा का शिव का पाठ चलेगा वैष्णवी में बोल रही हूँ
शिव पवित्र में आता है या अपवित्र में आता है शिव शिव जो है तमो प्रधान में आता है या सतो प्रधान में आता है पतित में आता है या पावन में आता है
पतित में आता है
तो आता ही है पतितन कामी कांटे में बड़े से बड़े कामी कांटे में आकर उसको बड़े से बड़ा फूल बनाता है
फूल
है बड़े से बड़ा फूल नहीं है
सुना बोली कि मुरली में सुना या कोर्स में सुना
क्या
जो वैष्णवी का जो पाठ चलेगा उसमें शिव की प्रवेशता तो होगी लेकिन मतलब मालूम नहीं पड़ेगा किसी को वो ऐसा कह रही
सारा ज्ञान उसने धारण कर लिया सारा ज्ञान दूसरों को सुना दिया जो लक्ष्य है वो सारा पूरा किया लक्ष्मी बनी रह क्या गया उसके लिए करने के लिए शिव क्या है शिव क्या चीज है धन है संपत्ति है महल या मकान है कुछ है कोई पदार्थ है स्थूल नहीं ज्ञान ही शिव है ज्ञान माने सच्चाई तो सत्य को उसने धारण कर लिया लक्ष्मी ने क्या धारण किया सत्यनारायण को धारण कर लिया और क्या चाहिए और शिव कैसे धारण किया जाता है शंकर मिल गया थोड़े कहेंगे धारण कर लिया शंकर को तो सिर्फ तीसरा नेत्र दिखाया जाता है खड़ा हुआ शिव नेत्र वो तो दिखावे की बात हो गई क्या शिव आया लेकिन प्रैक्टिकल क्या किया रुद्रमाला या रुद्रमाला का हेड प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाता है अरे अब प्रैक्टिकल में स्वर्ग स्थापन हुआ
अभी तो हुआ नहीं
कब होगा
वैष्णवी जब आएगी
कब होगा किसका इंतजार है
वैष्णवी का
तो क्यों मैंने उसने पूरा धारण किया ना तो उसने सारा ही शिव को अप कर लिया सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर सत्य है सच्चाई को उसने पूरा ही अप किया
बाबा वो अंतिम समय में हम माउंट आबू में बर्फ के अंदर रहते हैं ना बर्फ के अंदर रहते हैं फिर वो कंचन काया होके निकलते हैं ना वो उसके बाद हम वो
बर्फ के अंदर रहते कंचन काया
दबेंगे ना बर्फ के
दबेंगे ना बर्फ के अंदर
बनेगी वो वाला पॉइंट
और कंचन काया बनेंगे ऐसा बोला है ना मुरली में
कंचन काया जो बनेगी वो नई दुनिया में स्वर्ग में बनेगी या नरक में बनेगी कहाँ बनेगी अरे कंचन काया जो बनेगी निरोगी काया बनेगी देवताई काया बनेगी दिव्य शरीर बनेगा वो कहाँ बनेगा स्वर्ग में या नरक में तो स्वर्ग जो है माउंट आबू में होगा क्या जमुना के कंठे पर दिल्ली में होगा
वही
क्या बात है तपस्या धाम अलग
वो तपस्या
वो आत्मिक स्थिति में रहने का धाम है सुख भोगने का धाम नहीं है क्या पहाड़ को पीठ कुर्सी बनाना हो तो आ जाओ माउंट आबू तकिया नहीं मिलेगा आराम से लगा करके तकिया और सो जाओ
माउंट आबू में जो दिल वाला मंदिर है ना बाबा उसमें जितना भी देवी देवता के मंदिर बनाए उसकी मूर्ति बनाए उसके ऐसे ऐसे टीका लगा कर रखा और मूर्ति जहाँ दूसरा जगह दिखता है ऐसा नहीं है सब जोड़ी का जोड़ी बनाकर रखा है पूरा उसके अंदर में क्या है
क्या
दिलवाड़ा मंदिर के अंदर पूरा ऐसा यहाँ बिंदी लगा कर रखा
किसको बिंदी लगा कर
मूर्ति
में मूर्ति में सब बिंदी
वो जो मूर्तियाँ रखी है ना
आत्मिक स्मृति की आत्मिक स्मृति का टीका नहीं लगाते आप लगाते नहीं है
दूसरे मंदिर में तो नहीं,
वहाँ पक्का टीका नहीं लगाएंगे। दिलवाड़ा मंदिर में जब प्रैक्टिकल में आप तपस्या करेंगे तो आत्मिक स्मृति का टीका लगा के नहीं रहेंगे।
सारा ही साहिब सब सब में ऐसा पूरा मुखदेवी देवता का ये सब याद
है। हाँ जी, चलो। अनसुईया के लिए दिखाते हैं, इतनी पवित्र थी जिसके पति का नाम क्या था? अत्री। त्रि माने तीन, ब्रह्मा विष्णु शंकर, लेकिन आ माने नहीं, अर्थात जो तीन देवताओं की कोटि में नहीं है, एक ही है, वो है अत्री। वो कौन है? ना उसको ब्रह्मा कहेंगे नीचे स्टेज वाला, ना उसको विष्णु कहेंगे मध्यम स्टेज वाला स्वर्ग का देवता, और ना उसको शंकर कहेंगे। देवताओं में महादेव बड़े से बड़े देवता भी नहीं कहेंगे उसको, सिर्फ कहेंगे गॉड फादर, भगवान। न वो देवताओं की लिस्ट में कहा जाता है, न महादेव की लिस्ट में कहा जाता है, और न मनुष्यों की लिस्ट में कहा जाता है। उसको कहेंगे अत्री। कौन सी आत्मा हुई है? अरे शिव बाबा, वो संपन्न स्टेज है जहां वो सिर्फ हेवनली गॉड फादर है, जिसके लिए गायन है, भगवान आते हैं तो भगवान भगवती बनाते हैं। भगवान भगवती को देवी देवता नहीं कहेंगे, वो संगम युग की ऊंची से ऊंची स्टेज है, वो सदा शिव की स्टेज है, खड़ा हुआ नेत्र है, सदैव पुरुषार्थ खड़ा हुआ है। वर्तमान ब्राह्मण जीवन में ऐसा कोई भी पुरुषार्थी नहीं कहा जा सकता जो सदैव खड़ा हुआ हो। शिव और शंकर मिलकर के जब एक होते हैं प्रैक्टिकल, तब कहेंगे खड़ा हुआ, सदैव निराकारी स्टेज वाला, सदैव निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, वही है अत्री। उसे कहते हैं कश्यप, काश्य अर्थात याद का तेज, अप्पा माने पीने वाला। न उसे पानी पीने की दरकार रहती, न अन्न खाने की दरकार रहती, पांच तत्वों के ऊपर पूरा विजय पाने वाला। उसे किसी के आधार की दरकार नहीं। उसे कहा जाता अत्री, और उसको सहयोग देने वाली का नाम है अनुसुईया आमाने नहीं असुईया माने ईर्ष्या देश जिसकी किसी के साथ ही ईर्ष्या देश नहीं है उस नगरी का नाम पड़ा है जो शिवशंकर को बहुत प्यारी है काशी नगरी वो काशी ही अनसुईया है और इतनी पवित्र है कि गंगा यमुना सरस्वती उस पवित्रतम स्टेज को नहीं प्राप्त करती काशी नगरी ही एक ऐसी दिखाई गई है जब सारी पृथ्वी गर्त में जाती है पतन की असुर उसे पाताल में ले जाता है तो काशी नगरी छिटक करके अलग हो जाती है इसलिए मान्यता है भक्ति मार्ग में कि मरना है तो काशी में मरना है जो पतन के गर्त में नहीं जाती अंत समय में संग का रंग लेना है तो किसका लेना है काशी का काशीवासी बनना है वो ही अनसुईया है ऐसी पवित्र बनने वाली आत्मा ब्रह्मा की भी पालना करने वाली है यज्ञ के आदि में ब्रह्मा की भी पालना की होगी इसलिए मुरली में बोला है कि जो ब्राह्मणों की दुनिया में दीदी दादी दादाएं हैं इनकी भी पालना करने वाले तुम बच्चे हो आदि में गुण रत्नों से पालना की थी और अभी अंत में ज्ञान रत्नों से पालना करने वाली बनती ज्ञान दल का देवता गाया हुआ है कौन है? है अरे धन का देवता कोई है या नहीं कुबे
जो आठ देव बनेंगे जो आठ देव बनेंगे उसमें पुरुष जो बनेंगे स्त्री जो बनेंगे
स्त्री और पुरुष की बात नहीं है चाहे स्त्री चोला हो चाहे पुरुष चोला हो लेकिन आत्मिक स्थिति में रहने वाले की बात है आत्मिक स्थिति में टिकने के पुरुषार्थ की बात है
और ये गीता पाठशालाओं में बहुत सारे लोग अनेक धर्मों के लोग ज्ञान सुनाने के लिए घूम रहे हैं तो इन लोगों को गीता पाठशालाओं पे आने देना चाहिए या मना कर देना चाहिए
गीता पाठशालाओं को चलाने वाले एक का ज्ञान सुनते हैं एक मुख से ज्ञान सुनने वाले हैं या अनेकों के मुख से ज्ञान सुनने वाले हैं है? सीढ़ी से तो सुनते हैं वो तो माध्यम है लेकिन उनके दिल में एक मुख बसा हुआ है या अनेकों मुख बसे हुए हैं
एक तो बसा ऐसा हुआ है लेकिन वो आगे उनके गीता पाठशाला में जाते हैं
ज्ञान
सुनाते हैं,
हाँ, उनको
बैठने देना चाहिए या भगा देना चाहिए?
जो ज्ञानी तो आत्मा होगी वो किसी को भगाने का प्रयत्न करेगी या थमाने का प्रयत्न करेगी? सुनना पड़ेगा, कोई जबरदस्ती है? बाबा ने तो कहा फालतू बात एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, तुम सुनते हुए भी न सुनो, तुम्हें एक की बात सुननी है, अनेकों से सुनेंगे तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। औरों से भी अगर सुनने में किसी को इंटरेस्ट आने लगा तो कन्वर्ट होने वाली आत्मा बनेगा या नहीं बनेगा? है? दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा साबित हो जाएगा। ये कन्वर्शन होने की शूटिंग अभी चल रही है,
वो आने नहीं देना चाहिए।
ये कोई बात हुई? अरे कोई आए सुनाए, हम एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते, सुनते हुए नहीं सुनते हैं। हियर नो, क्या बोला? हियर नो, ये भी
है, वो लोग सुनते नहीं है, अपना खराब होते हैं।
खराब तो तब होंगे जब वो हमारे मन को कंट्रोल कर ले। हम मन से बाबा की याद में टिके हुए हैं तो कोई कितना भी सुनाता रहे हमारा भाग्य बनेगा कि बिगड़ेगा? हमारा भाग्य तो बनेगा। हम ये भी बातें सुने क्यों?
बाकी अपन त्रिमूर्ति का एडवांस का जो भी हम जानते हैं उससे जानकारी तो दे सकते हैं ना?
हाँ, अगर इतनी सामर्थ्य है कि उनकी सुनाई हुई बातों का हम जवाब दे सकते हैं तो जवाब देना है, लेकिन जवाब उनको ही देना है जो वाद विवाद न करे, मुरली की बात सुनने वाले हो। मुरली की बात कोई नहीं सुनते हैं, अपनी ही बात कहे चले जा रहे हैं, चार चित्तों के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं, अव्यक्तवाणी के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं, तो उनसे वाद विवाद करने में कोई फायदा नहीं है। बाकी जब वो देखेंगे ये हमारी बात सुनता ही नहीं, सुनते हुए अनसुनी करता है, हमारा तो आना यहाँ बेकार है। खाना बंद कर देंगे, हाँ जी।
सबसे ज्यादा ब्रह्मा की बोल आ रही है,
हाँ जी,
और ब्रह्मा की बोल आती में जाते हैं,
हाँ जी,
तो विषय अनिश्चय का कोई प्रभाव तो नहीं पड़ता
है?
विषय अनिश्चय का कोई प्रभाव तो नहीं
पड़ता? जो सूर्यवंशी बच्चे होंगे राम वाली आत्मा को स्पेशल फॉलो करने वाले होंगे वो प्रभावित होंगे, या जो दूसरे धर्म के बीज होंगे वो प्रभावित होंगे? अरे त्रिमूर्ति में अंकल कौन है ये आज तक तुमने सुन ही नहीं पाया, समझा ही नहीं, और ताऊ कौन है वो जाना ही नहीं है, नहीं जाना। अरे तीनों देवताओं में बड़ा भाई कौन है? वो ताऊ हुआ ना, है, और ब्रह्मा बाप है, उसका छोटा भाई कौन है जो अभी भी ब्रह्मा के कंट्रोल में है, ब्रह्मा की परंपराओं का फॉलोअर है, कौन है? विष्णु वो अंकल हो गया, अंकल आंटी हो गया, आंटी है तो कोई अंटा भी होगा। अंटी कौन है वो समझ में आ गया है? वैष्णवी देवी, और वैष्णवी देवी कोई ब्रह्मा कुमारी होगी या नहीं होगी? ब्रह्मा कुमारी होगी। और ब्रह्मा कुमारियां जिस किसी भी सेंटर में है वो ब्रह्मा कुमारियों को साथ देने वाला कोई न कोई भाई के रूप में साथी होगा या नहीं? ईश्वरीय सेवा में साथ देने वाला कोई न कोई मुख्य भाई होगा या नहीं होगा? है? होगा। तो वो यंटा हो गया। क्षीर सागर है कहाँ? जेल में, उज्जैन में। हाँ जी,
राधे कृष्ण का मंदिर भी है तो वहाँ पे भजन करते हैं, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हाँ,
तो उसका अर्थ क्या है?
अरे तो सीधी सी बात है, ये यादगार कहाँ की है? उज्जैन, उत्त माने ऊपर और जैन माने जैन। जो ऊंचे से ऊंचा जैन है उसका नाम है उज्जैन। अब ऊंचे से ऊंचा जो उज्जैन है वहां किसकी पूजा प्रसिद्ध है? महाकाल की पूजा प्रसिद्ध है। वो ऊंचे से ऊंचा जैनी है, झाड़ के चित्र में सब धर्म दिखाए गए हैं। कौन सा धर्म नहीं दिखाया गया है? जैन धर्म नहीं दिखाया गया। क्यों नहीं दिखाया गया है? अरे जिन शब्द से बना है जैन, जिन माने जीतने वाला। क्या जीतने वाला? इंद्रियों को जीतने वाला। तो जो इंद्रियों को जीतने वाला अव्वल नंबर में साबित होता है वो ही काल के ऊपर विजय पाता है, वो ही महाकाल है। वो चैतन्य है और बाकी सभी देवी देवताएं उसके छत्र छाया में। इसलिए चाहे वो फेलियर राम की आत्मा हो, चाहे सीता वाली आत्मा हो, राधा वाली आत्मा हो, कृष्ण वाली आत्मा हो, वो सब क्षीर सागर की स्टेज में दिखाए जाते हैं। और
बाबा पहले ये पुरानी माताएं होती है, जो पहले बदर था बहुत नीचा था, बदर जो है बहुत नीचा
था। क्या था?
बादल
बहुत नीचा था। ये क्या चक्कर चला लिया?
पुरानी कहानी है बाबा, वो तो सुनाई कहानी,
सुन सुनाई बातों में विश्वास हो जाता है। और हाँ, अब आपकी कान में सुनाई नहीं पड़ता। हाँ, उधर से भी बोल रहा है, इधर से भी बोल रहा है। महाभारत में
अभिमन्यु
होता है, हाँ, उसे चक्र में फंसने का रास्ता तो मालूम होता है जाने का, हाँ, लेकिन निकलने का रास्ता नहीं मालूम होता है। हाँ, और वो उसमें अपना शरीर छोड़ देता है। हाँ, भक्ति मार्ग में कहावत है, नीम आकी में खतरे जंग। कोई कोई ऐसे झोला छाप डॉक्टर होते हैं जो पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते विधिवत, और पूरी पढ़ाई न पढ़ने के कारण वो सेवा करना शुरू कर देते हैं, बीमारियों से लड़ाई लड़ना लड़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब कोई मरीज मरने लगता है तो हक्के बक्के रह जाते हैं, फेल हो जाते हैं। ऐसे ही वो नाम शास्त्रों में रखा गया अभिमन्यु, अभिमान की औलाद है, उसमें कूट कूट के अभिमान भरा हुआ है। क्या अभिमान भरा हुआ है? मैं भगवान का शिष्य हूं, मेरे को पढ़ाई पढ़ाने वाला बचपन से कोई भी नहीं है, कौन है? खुद भगवान मेरे को बचपन से पढ़ाई पढ़ा रहा है। मैं किसी गुरु को नहीं मानता। अब ये नहीं देखेगा कि वो पढ़ाई विधिवत पढ़कर के पूरी की है या नहीं की है। विधि से सिद्धि मिलेगी या विधि को छोड़ करके सिद्धि लेंगे? हैं? विधिवत पढ़ाई पढ़नी चाहिए। फिर दूसरा अभिमान है, मेरे को जन्म देने वाला ऊंचे ते ऊंचा पुरुषार्थी, जिसके शरीर रूपी रथ को भगवान डायरेक्ट कंट्रोल करता है, वो मेरा बाप है, वो मेरा जन्मदाता है। ये दो अभिमान पतन के गर्त में ले जाने वाले हैं। वे अहंकार के सूचक हैं। भगवान को कोई मानता हो लेकिन भगवान की बातों को न मानता हो, मुरलीधर को मानता हो और मुरली से प्यार न हो, मुरली रोज सुनता न हो, जहां मुरली का संगठन क्लास चलता है वो भी अटेंड न करता हो, तो प्रैक्टिकल जीवन में पास होगा या फेल होगा? फेल हो जाता है। हो सकती है?
हो चुकी है।
ये बैठे कौन है? अगर 36 के बाद उसको फॉलो करने वाली यज्ञ के आदि की आत्माएं प्रत्यक्ष नहीं है तो ये इतना बड़ा संगठन कहां से आ गया? दिखाई नहीं पड़ता। और किसकी बात है? हाँ, और किसकी बात है? हाँ हाँ, कोई आठ के डायरेक्ट फॉलो करने वाले हैं और कोई ऐसे भी है जो आठ को डायरेक्ट फॉलो करने वाले नहीं है, उनको फॉलो करने वालों के फॉलोअर्स है। हाँ जी,
बाबा ये बोला था पहले देवी के पुजारी हैं आप ही संप्रदाय, लेकिन अभी बताया है कि महाकाली के पुजारी हैं आप ही संप्रदाय।
अरे ये देवी नहीं है,
ये महाकाली के पुजारी का नहीं कहा।
महागौरी जो है वो किसी को फॉलो करती है या नहीं करती है? कोई की तपस्या करती है कि नहीं करती है? किसी को हम बैन करके बैठी हुई है? बोलो बोलो जल्दी बोलो, करती है। और महाकाली अपने से ऊपर किसी साकार को मानती है या नहीं मानती है? कि छाती के ऊपर पांव रखती है, क्या करती है? पांव रख देती है। इसलिए फॉलोअर्स को गलत फहमी पैदा हो जाती है। वो फॉलोअर्स जय माता दी का नारा तो लगाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि जिसकी हम जयकार लगाते हैं वो कोई विधवा नहीं है, उसके ऊपर भी कोई सरपरस्त बैठा हुआ है। इसलिए बोला कि सिंगल देवी हो या सिंगल देवता हो, जिनकी पूजा भक्ति मार्ग में द्वापर के मध्य से दिखाई गई है, द्वापर के अंत में खास दिखाई गई है, वो सिंगल की उपासना करने वाले सब हैं रावण संप्रदाय। रावण संप्रदाय शुरू ही होता है द्वापर युग से, जब द्वैतवादी युग शुरू हो जाता है। एक को नहीं मानते, इतनों को मानते हैं, दो दो को फॉलो करते हैं। और